वही बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर की इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा पाशा 6472903773 6472903773।
770 AM دی نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com لوکل نمبر 6478724900।
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਨੋਅ ਪਲੋ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ 311 ਐਪ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰੋ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬਰਫ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ brampton.ca/snow ਤੇ ਜਾਓ।
अदनान अलवी प्रेसिडेंट लाइफ टाइम ग्रुप। अदनान अलवी को कौन नहीं जानता। आप पिछले 15 सालों से अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर रहे हैं कि किस तरह अपनी इनकम और अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जा सकता है। आपके लिए हमेशा यूनिक और इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेकर आते हैं। अगर आप आज की बदलती हुई रियल एस्टेट मार्केट से परेशान हैं और चाहते हैं कि आप अपने पैसों को ज्यादा सिक्योर रखते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट बनाएं, तो आज अदनान अलवी से राब्ता करें। 416-301-0249।
दुबई जाना है।
वो क्यों?
बेटी की शादी है, सोने और डायमंड की यूनिक ज्वेलरी की खरीदारी करनी है।
ए छोड़ो जी, एक दफा चोपड़ा ज्वेलर को विजिट करो, दुबई से बेहतर है। गोल्ड, जड़ाऊ जेवरात, डायमंड, जड़ाऊ डायमंड ज्वेलरी, चूड़ियाँ, कड़े, पेंडेंट, हर जेवर यूनिक है और बेशुमार वैरायटी है। मजे की बात है, डिस्काउंट्स भी बहुत सारे हैं। किस किस को बताऊं? सीइंग इज बिलीविंग।
एड्रेस दें।
1066 एल्बियन रोड, एल्बियन इज़लिंगटन की नुक्कर पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल कलेक्शन, चोपड़ा ज्वेलर्स। 416-744-7534। कनाडा में दुबई, चोपड़ा ज्वेलर्स।
वेलकम 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 तमाम सामईन को और नाजरीन को एक बार फिर खुश आमदीद प्रोग्राम साज़ो आवाज़ में, और मैं हूं वही आपका होस्ट आमिर अहमद। आप जाना पहचाना, आप सबका चहीता ऐसा होता, अपनी तारीफ तो खुद किए जाओ। अभी साउंड इफेक्ट आना शुरू होंगे, बस वेट करें। और एज यूजल हमारे साथ शैम्पेन कलर के कारपेट पे टिक टॉक करती जो है वो आ चुकी हैं स्टूडियो में, शाज़िया मलिक साहिबा। तो आइए उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
WS कैसे हो?
अच्छा, आज आपने वो गंदा वाला ग्रीन पहना है।
हाँ, आज मैंने गंदा ग्रीन पहना।
और आज तो हमारा माहौल ब्लू है।
हाँ, ब्लू है क्योंकि कंजर्वेटिव की गवर्नमेंट आ रही है।
कनाडा ब्लू होने वाला है
सारे का सारा, पूरा
पूरा पूरा,
जैसे वो वहाँ पे लाल हुए ना, यहाँ पे नीला होगा
पूरा का पूरा।
जैस बड़ी, आज तुमने क्रिस्प किस्म की शील्ड पहनी हुई है, ये क्या चिकर है?
पर कभी कभी जो है वो सर्दियों में मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ।
अच्छा, सर्दियों में अकड़े हुए कपड़े और गर्मियों में थकेले
बिल्कुल पसीने में थकेले हो जाते हैं।
अच्छा,
सर्दियों में क्योंकि मौसम थकेला हुआ होता है तो आदमी अकड़ा हुआ रहता है। गर्मियों में जो है हर तरफ हल्ला गुल्ला फला गुल्ला, तो मैं सोचता हूँ कि यार थकेले हो जाओ ये।
अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख रही हूँ दिन ब दिन मेरे साथ काम करके ना बहुत इंटेलेक्चुअल होते जा रहे हो। तो
नहीं, काम नहीं करता मैं, सजा भुगत रहा हूँ। काम मैं 770 में करता हूँ। यस
अच्छा अच्छा,
लेकिन आपके साथ काम नहीं करता। आपके साथ तो वो
चलो रह रहे के, मेरे साथ रह रहे के, तो मैं कह रही हूँ इंटेल के चूल हो
गए जो है वो अपने चिंता रहता हूँ या लाज एक दिन और कम हो गया।
वैसे तुम जब बच्चे थे छोटे थे, जब बड़े हो रहे थे, तुमने सोचा तो नहीं होगा तुम मेरे साथ काम करोगे बड़े हो गए?
कभी नहीं सोचा था, लेकिन वो कहते हैं ना कि बस भाइयों की मोहब्बत में
मजबूत ही कहते हैं मुझे पता था मैं गुजगुजी कर लेता
नहीं
कि मुझे बड़े हो गए तुमसे काम करना तुम्हारे साथ।
मैं कनाडा ही नहीं आता, मुझे जरा सा भी हिंट होता ना
वैसे ही कहते मुझे पता था मैं खुदकुशी कर लेता,
बस आसपास मेरा भी कोई माहौल होता कुछ कर लेता मैं भी।
ठीक है,
लेकिन बहरहाल इंसान के अपने अमाल होते हैं, कर्मा होता है
जो उसके सामने आता है,
बचपन का किया हुआ कोई आज सामने आ गया तो बहरहाल अब हम उसको भुगत रहे हैं और हम अल्लाह से हर बीतते हुए दिन पर दुआ करते हैं या अल्लाह आज का दिन गुजर गया।
कोई नहीं, तुम लंबी छुट्टी पे जा रहे हो,
आपको दो दिन की छुट्टी दे रहा हूँ।
तुम भी जा रहे हो ना लंबी छुट्टी पे?
मैंने कहा ना आप मेरे बयान पर और मेरे अमल पर नजर रखा करें।
अच्छा अच्छा ठीक है,
जो मैं करता हूँ वो मैं बिल्कुल नहीं करता, जो मैं कहता हूँ वो बिल्कुल नहीं करता, जो मैं करता हूँ वो मैं कहता नहीं, इससे आप दूर रहे।
बिल्कुल मैं दूर रहूंगा,
वरना कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि करें क्या और करें क्या।
तुमने अपने मुंह से कह दिया कि तुम इंतहाई साक्षी आदमी हो।
मैं ये खबर आप बना रही है,
तुमने खुद कहा जो मैं कहता हूँ मैं नहीं करता, यानी तुम साधु शास्त्री हो, हमें कह रहे हो।
जरूरी थोड़ी है, बहुत सारे आदमी जिंदगी में होता है वो बात कर रहा है, तुमने वैसा करे भी
यानी दूसरे को धकेल के खुद ही मैंने करा।
अब हम देख रहे थे वो आज बयान चलाया इमरान खान साहब का, जी वो तारीफें हो रही है जी आर्मी की और ये वो, उन्होंने वैसा किया नहीं ना,
बहुत कुछ एआई जनरेटेड भी होता है ना।
नहीं वो एआई जनरेटेड नहीं था।
अच्छा अच्छा,
वो उनके कैपिटल टॉक में किसी एक शो में उन्होंने पाकिस्तान में, आपको मालूम है एक टाइम पे तो हम सब एक पेज पे हैं और ये पेज पे हैं, फला पेज पे हैं, ये सब चलता ही रहता है। तो क्या उन्होंने किया वैसा? नहीं
नहीं, ऐसा नहीं किया।
तो दिस इज अ यूनिवर्सल नॉर्म्स।
अच्छा अच्छा, तो यानी तुम भी सियासतदान बनते जा रहे हो गंदे किस्म के?
गंदे इसमें सियासतदान होता है
नहीं,
इसमें अच्छा हो गंदा होता ही नहीं,
डिग्री होती है, डिग्री होती क्या होता है? अच्छा अच्छा, वैसे
लेकिन लिफाफे वाइज जर्नलिस्ट और गैर लिफाफे वो होते हैं।
वो होते हैं, बिल्कुल हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम तो मानते हैं भाई जान, बिल्कुल
हमने
अपनी आंखों से देखा है लोगों को लिफाफे
जर्नलिज्म जो है वो होता है।
अब हमारा मुंह मत खुलवाओ,
नहीं ना खुले, आप खबरें सुना दें, वैसे आज आपकी कोई रिपोर्ट भी है?
हाँ, आज जी बड़ी जबरदस्त स्पेशल रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट जो है आपके रोंगटे खड़े करेगी कि इसराइल के प्लान्स क्या हैं और क्या वो प्लान्स पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं, इसलिए जितना समझ सकते हो समझो और जितना संभल सकते हो संभलो, क्योंकि अगर आपके ऊपर इजराइल आ गया फिर आप सोचें आपके साथ क्या हो सकता है जी। और क्योंकि उनका प्लान जो है वैसे ही, आज पूरी हम हिस्ट्री ट्रेस करेंगे कि ये ग्रेटर इजराइल का प्लान क्या है, यू नो इन द सिनेरियो ऑफ ये जो फॉल ऑफ सीरिया हुआ है उसके उसमें आप समझ रहे थे मैं फॉल ऑफ ढाका कह रही हूँ, नहीं नहीं, वैसे फॉल ऑफ ढाका की भी एक खबर है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। चलिए जी जल्दी से हम अपनी खबरों की तरफ जाते हैं। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय आमिर साहब्स फ्रेंड राजा बाशा। तो राजा बाशा जो है वो आपके ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं, अफोर्डेबल आपको होम एंड ऑटो इंश्योरेंस देते हैं, आप उनके पास जाएं ऑल स्टेट में। इनका नंबर है 6472903773 LM5। अगर आपको बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से पैसे अपने प्यारों को इमीडिएटली भेजने हैं तो आप LM5 का यूज करें, इसमें रेफरल कोड जो है EZ10 यूज करें। ऑन्टारियोज लार्जेस्ट अलाउ पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट के दो रेस्टोरेंट्स हैं मिसेस सागर ओकविल में, आप इनको कॉल कर सकते हैं, डाइनिंग भी कर सकते हैं और खाना मंगवा भी सकते हैं। 9052323663 मिसेस सागर में, ओकविल में 9052262294। और जनाब चोपड़ा ज्यूलर्स कहते हैं जबरदस्त एलिगेंट यूनिक स्टाइल्स हैं हमारे पास जो आपको दुबई की याद करवाएंगे, तो आप इनको भी कॉल कर सकते हैं आपके कोई भी अगर घर में ओकेजन आने वाले हैं। इनका नंबर है 4167447534। ठीक है जी, चलो जी अपनी हम चलते हैं जनाब जो है वो आज की खरबों की तरफ। खरबों में सबसे बड़ी खबर तो यही है कि आज टूडो साहब ने अपनी कैबिनेट जो है रीशफल की है। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं सारी चीज तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सके देख सकते हैं, वहां पे ये सेरेमनी एक हुई थी जिसको प्रिजाइड किया था गवर्नर जनरल मैरी साइमन इन द बॉल रूम एट रिड्यू हॉल, और वहां पे जब से टूडो साहब को कहा जा रहा है कि आप रिजाइन दो उस वक्त से लेके अब तक उनकी आज जो थी पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। तो इसमें हम आपको डिटेल्स बता देते हैं, ऑन्टेरियो के एमपी जो है नेथियल एर्सकन स्मिथ वो अब हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटीज मिनिस्टर होंगे, वो ले रहे हैं ये पोस्ट शॉन फ्रेजर से क्योंकि उन्होंने कहा था कि ही विल नॉट रन। फाइनेंस एंड इंटर गवर्नमेंटल अफेयर्स जो मिनिस्टर थे डोमिनिक लेब्लॉ वो तो अब आपको पता ही है फाइनेंस मिनिस्टर बन गए हैं, तो वो उसी पोजीशन पे अब रहेंगे क्योंकि अब न्यूज आई है कि जो पहले जो है प्राइम मिनिस्टर साहब मॉइट कार्नी को बुलाना चाहते थे, तो अब उन्होंने कहा है लेब्लॉन्क को कि नहीं नहीं उनको नहीं हम ला रहे, आप ही रहोगे इस पोजीशन के ऊपर। इसके अलावा ओंटारियो एमपी करंट चेयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस कमेटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस डेविड मैकिन्टी जो है अब पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर होंगे। क्यूबेक के जो एमपी हैं रेचल बेंडियन ऑफिशियल लैंग्वेजेस मिनिस्टर एंड एसोसिएट मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी। क्यूबेक एमपी एलिजबेथ ब्रे इज गोइंग टू बी मिनिस्टर ऑफ नेशनल रेवेन्यू, ये जो है पोस्ट ले रही हैं मैरी क्लॉड बेबियो से, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि वो अब रन नहीं करेंगी। मैनिटोबा एमपी टेरी डुगेट जो है वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेरीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नोवा स्कोशिया एमपी डैरन फिशर मिनिस्टर ऑफ वेटरन्स अफेयर्स एंड एसोसिएट डिफेंस मिनिस्टर। न्यूफाउंडलैंड एंड लेब्राडोर एमपी जोएन थॉमसन मिनिस्टर ऑफ सीनियर्स, क्योंकि सेमस और रेगन जो हैं उन्होंने भी कैबिनेट जो है से निकल गए हैं। ब्रैम्पटन की नॉर्थ की एमपीजी रूबी सहोता साहिबा अब बन गई हैं मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेडरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ सदर्न ऑन्टारियो, और ये जो रोल था ये उनके पास था फिलोमिना टासी के साथ, जो कि अब कह रही हैं कि अब वो नहीं ये रोल लेंगी। डुगेट जो हैं और सहोता जो हैं इनके पास कुछ और भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ सकती हैं। अनीता आनंद जो हैं उनको ट्रांसपोर्ट एंड इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री दी गई है। गैरी आनंद संगारी जो हैं उनको ऑलरेडी मिनिस्टर ऑफ क्राउन इंडिजिनस रिलेशंस हैं, उनको अब दिया गया है नेशनल अफेयर्स एंड कनेडियन नॉर्दर्न नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंसी का रोल भी, और ये रोल इन्होंने लिया है डैन वैंडल से जो कि अब नहीं रन करेंगे। स्टीवन मैकिनियन ऑलरेडी लेबर मिनिस्टर हैं, लेकिन अब इनको दिया गया है एम्प्लॉयमेंट वर्क फोर्स डेवलपमेंट एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस का रोल भी, क्योंकि ये रोल ले रहे हैं रैंडी बॉयसरॉन से, क्योंकि जिनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन आपको आ गए थे आपको पता ही है, और इन्होंने लास्ट मंथ कैबिनेट छोड़ दी थी। जिनेट पिटर टेलर जो हैं उनको अब ट्रेजरी बोर्ड प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि पहले अनीता आनंद के पास थी, और इसके अलावा जो हैं आज फिर से कुछ लोगों ने पहले भी कहा था और आज फिर से आज एक रॉब ऑलिफेंट साहब जो हैं वो भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, जो ट्रूडो साहब को कह रहे हैं कि भई आप रिजाइन करो। जगमीत सिंह साहब ने आज बहुत बड़ा बयान दे दिया, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि जनाब डेफिनेटली गवर्नमेंट आने वाले दिनों में चेंज होएंगी। अपने कॉकस के साथ बात कर रहे थे और वो उसके बाद उन्होंने रिपोर्टर्स के साथ बात की, उन्होंने कहा जी कि मैं उनसे पूछ रहा हूं कि क्या हम वोट देके गवर्नमेंट को खत्म कर सकते हैं कि नहीं। उन्होंने कहा जी कि कैनेडियंस को चांस मिलना चाहिए टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट जो उनके लिए काम करे। वो कहते हैं कि एक लेटर मैंने लिखा है कैनेडियंस के नाम पे, जिसमें कि मैंने उनको बता दिया है कि अब जो नो कॉन्फिडेंस मूव नेक्स्ट टाइम हाउस ऑफ कॉमन्स की सिटिंग में आएगी तो उसके अंदर ये लिबरल गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे। और उन्होंने ट्रूडो साहब को पहले भी कहा था, वो कहते हैं जी मैंने कहा था रिजाइन करें और उसको कर देना अब चाहिए है। और ये जो अर्ली सिटिंग होने वाली है 2025 में, इसमें शायद ये एक और मोशन लाई जा सकती है, शायद क्या यकीनन लाई जाएगी। और वो कहते हैं जी कि वैसे तो लिबरल्स ने बहुत सारा काम किया है, लेकिन उन्होंने दे लेट पीपल डाउन अगेन एंड अगेन, एंड ट्रूडो जो है वो फेल हुए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर का जॉब, और जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उनका फोकस कैनेडियंस पे नहीं है, और इसलिए कैनेडियंस को मैं कहता हूं कि दे नीड अ चांस। और अकॉर्डिंग टू सोर्सेज एनडीपी जो है उसकी एक इमरजेंसी कॉकस की मीटिंग लास्ट नाइट हुई थी, और उस वक्त इन्होंने उससे पहले जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को बॉक्स नहीं करना चाहता टू ब्रिंग गवर्नमेंट डाउन, लेकिन अब जाहिर है कि बिल्कुल क्लियर हो गया। न्यू ईयर में जाहिर है डेफिनेटली जिस वक्त ये आएंगे तो कंजर्वेटिव दूसरी जो है वो लाएंगे एक और चौथी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मूव, और इस दफा ना जगमीत सिंह की पार्टी ना ही ब्लॉक क्यूबेक का साथ देगी, और कंजर्वेटिव के साथ मिलकर गवर्नमेंट को नीचे लाया जा सकता है, यानी कि हटाया जा सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ये जो भी बने हैं रिसेंटली डोमिनिक लेब्लॉ, उन्होंने कहा जी कि ये जरूरी नहीं है कि लिबरल गवर्नमेंट हर बात का और हर पोस्ट का जो ट्रंप साहब डालते हैं ऑनलाइन उसका जवाब दे, हमारे लिए और भी बहुत सारे काम हैं करने के लिए, और आप लोगों ने इसको क्यों इतना सीरियस ले लिया। वो कहते हैं जब मार-ए-लागो में मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ गया था डिनर के ऊपर तो ट्रंप साहब जो है जोक कर रहे थे और सब लोग वहां पे हंस रहे थे, तो ये बिल्कुल एक हंसी मजाक का माहौल था, तो ट्रंप साहब मजाक है तो यानी भाईजान हूं एडा वड्डा बंदा तुसी ते ही कहना ना कि मजाक कर रहे हैं और तुसी की कह सकते हो, मतलब ये और की कहोगे ऐसी लड़ाई करांगे थोड़े नाल। अच्छा जी, तो वो कहते हैं जी कि आपको तो कहा गया कि ट्रंप साहब ने कहा कि मैं थ्रेटन कर रहा हूं कि 25% मैं टैरिफ्स कैनेडा और मैक्सिको पे लगाऊंगा ताकि ये इलीगल फ्लोज जो है ड्रग और माइग्रेंट्स का रुक सके। तो कहते हैं ये सब जो था बड़ा इट वॉज इन जो है चीयरफुल बैंटर, उन्होंने जो वर्ड यूज किया, और वो कहते हैं जी कि हमको ज्यादा फोकस करना है कि अब हम बात कैसे इफेक्टिवली ट्रंप साहब के साथ कर सकते हैं और ताकि इन टैरिफ्स जो हैं उनसे बचा जा सके, तो हमारा जो फोकस है उसके ऊपर है। और जनाब एक और भी सबसे बड़ी खबर आज की, क्रिस्टिया फ्रीलैंड के ऊपर एक बुक आ गई है सर, है जी बुक आ गई है इनकी, और इसको बहुत महीने के बाद इसने आना था लेकिन इसको फटोफट जो है अब पब्लिश किया गया है। इसका नाम है क्रिस्टिया फ्रॉम पीस रिवर टू पार्लियामेंट हिल, और ये इसको ये जो बायोग्राफी लिखी है टोरंटो बेस्ड जर्नलिस्ट कैथरीन सैलिक्स ने, इसकी इजाजत नहीं दी थी क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इसको, तो ये अनऑथराइज्ड बायोग्राफी है जो कि इस जर्नलिस्ट ने लिखी है और इसको पब्लिश किया हुआ है हाउस ऑफ अनैंसी प्रेस ने, और इस बुक ने कवर किया है जो इनका चाइल्डहुड कैसे गुजरा पीस रिवर में एज अ चाइल्ड, फिर ये हार्वर्ड गई, फिर इनके जो हैं यूक्रेन के साथ क्या कनेक्शंस हैं, और जो 20 इयर्स इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट गुजारे, फिर अपना पॉलिटिकल करियर इसने कैसे शुरू किया और दो इंतहाई पावरफुल पोजिशन पे रही। ये बुक जो है इट इज बेस्ड ऑन 130 इंटरव्यूज विद हर रिलेटिव्स फ्रेंड्स कॉलीग्स बिटवीन 2021 एंड 2024, और ऑथर जो है वो कहती हैं जी कि मैंने इस बुक के लिखने के लिए बहुत दफा कोशिश की कि मैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड से मिलूं और उनसे बात करूं लेकिन वो मुझे बिल्कुल नहीं मिल सकी। एक इंटरव्यू ये दे रही थी ZTV पे और उस पर इन्होंने बात की और इन्होंने कहा जी कि मैं जो है इनसे भी इनपुट्स लेना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम ही नहीं दिया गया, तो इनसे वो जो एंकर थे उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आपको चांस दिया जाए कि आप उनसे बात करें तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आप उनसे क्या पूछेंगी, तो वो कहती है कि जी मैं उनसे पूछूंगी कि क्या आप डिजायर करती थी प्राइम मिनिस्टर बनने का, लेकिन जाहिर है कि मुझे पता है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देंगी। यस बिल्कुल समझदार हो तुम, वैसा जवाब कैसे दे सकती हैं, है जी। तो ये जो लवी डवी लव अफेयर था, ये लव अफेयर इन अ सेंस के बड़े अच्छे फ्रेंड्स थे ट्रूडो साहब और ये, तो ये अब इसमें कुछ अंदर की स्टोरियां जो है वो आई हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने कुछ एक्सर्प्ट्स इसमें पढ़े हैं जो इन्होंने उसमें बुक के जो दिए हैं आज एडवांस उसमें बुक के आने से पहले, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जब बुक आएगी तो उसको भी पढ़ेंगे। अच्छा जनाब ऑन्टेरियो जो है वो प्रपोज कर रहा है कि बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है हेल्थ स्टाफिंग एजेंसी के लिए। वो कहते हैं जी कि हमें पता है कि इनका काम बहुत अच्छा है, स्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म होम्स है ये $1 बिलियन जो है पर ईयर यूज करते हैं जब ये शिफ्ट में टेम्पररी वर्कर्स को बुलाते हैं और इनको जो रेगुलर वर्कर है उनसे बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। हेल्थ मिनिस्टर सिल्विया जोन्स ने कहा कि जी हम बहुत महीनों से जो है ये एक लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि हमें पता होना चाहिए कि एजेंसीज जो है बिलिंग कैसे करती हैं, लेकिन एजेंसीज कहती हैं जी कि ये इससे बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है पेशेंट्स की वो इनके पास पहुंच जाएगी और हमें पता नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन ब्रीच ना हो जाए या कैसे ये उसको यूज कर सकते हैं, तो पहले इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन लाना जरूरी है कि अगर कोई वो हमसे इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में लेंगे तो फिर उसको जो है प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। तो आज एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये बड़ी अच्छी चीज है, पता चलना चाहिए कि भाई ये किधर यूज कर रहे हैं इतना पैसा और कैसे कर रहे हैं। ईयू जो है आपको पता ही है कि सारी दुनिया में बहुत ज्यादा कंडेम किया जा रहा है इसराइल को कि बेतहाशा वो जो है वो कर रहे हैं जुल्म पैलेस्टाइन पे, लेकिन ईयू अपना जो पैसे है वो देता जा रहा है इसराइली इंस्टीट्यूशंस को अंडर इट्स होराइजन स्कीम, और वो कहते हैं जी कि ये सारा पैसा हम रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए दे रहे हैं। अब आपको क्या पता है भाई कि ये तो इसराइल पैसा जा रहा है, वो रिसर्च और इनोवेशन पे कर रहे हैं कि किधर कर रहे हैं। बहरहाल जी यूरोपियन यूनियन का जो डाटा आज लिया है कुछ मीडिया हाउसेज ने, उन्होंने कहा जी जब से लास्ट ईयर से ये वॉर शुरू हुई अक्टूबर 7 से तब भी ईयू जो है इजरायली इंस्टीट्यूशन को $250 मिलियन दे चुका है विच इंक्लूड $674,000 टू इट्स एरोस्पेस इंडस्ट्रीज टॉप एरोस्पेस एविएशन मैन्युफैक्चरर्स जो कि सप्लाई करते हैं इजरायली मिलिट्री को। आपको पता ही है कि सारी तबाही फैलाई हुई इजरायली मिलिट्री की है। बिटवीन 2014 टू 2020 $2.8 मिलियन वर गिवन अंडर होराइजन यूरोप, ओवर 11.2 मिलियन अंडर होराइजन 2020। जो एलबीट सिस्टम्स है इसराइल बेस्ड मिलिट्री कंपनी है जो कि 5 प्रोजेक्ट्स जो इसके थे उसको 2.3 मिलियन दिए गए थे, इसके अलावा और भी जो है 1.47 मिलियन दिए गए थे अंडर रेस्पॉन ड्रोन प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया था 2019 में टू डेवलप 3D मैपिंग फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी अंडर COPAC जो कि आया था 2017 में, उसमें एलबीट सिस्टम्स के अंडर को और हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम जो है उसको 1.05 मिलियन दिए गए हैं फॉर देयर इंजीनियरिंग क्वांटम डॉट्स ताकि ये इसके अंदर अल्ट्रा फास्ट कंप्यूटर्स जो हैं वो बनाए जा सकें जो डिसरप्ट कर सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम्स को। तो पैसे तो जी जनाब दबादब दिए जा रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि सीज फायर होना चाहिए, तो भाईजान फिर कैसे होगा। आज इटली जो है उसने डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए फाइन किया है ओपन एआई को 15 मिलियन यूरोस का, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि इन्होंने पर्सनल डेटा यूज किया है चैट जीपीटी के अंदर, और ये 2 साल से इटालियन वॉचडॉग जो है इटालियन डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इनको फॉलो कर रहा था और इनको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उन्होंने जो है टेम्परेरली इटली ने मार्च 2023 में चैट जीपीटी को ब्लॉक भी किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था जी कि ये बहुत सारा ब्रीच कर रहे हैं, डेटा जो है वो लोगों का ले रहे हैं पर्सनल जो इनका है, और वो फीड कर रहे हैं चैट जीपीटी को उसको स्मार्ट बनाने के लिए। तो इन्होंने ना तो कोई इसकी लीगल बेसिस बताई है, ना कोई इजाजत ली है, ना कोई मैकेनिज्म डेवलप किया है कि जिसके के अंदर ये इस चीज को यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा खतरा है कि एज चूंकि वेरीफाई ये नहीं करते हैं तो बहुत सारे बच्चे अंडर 13 जो हैं वो इन अप्रोप्रिएट उनसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो इन अप्रोप्रिएट उनको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। तो इसलिए जो है आज इसको जो है फाइन किया गया है। आमिर साहब वैसे आपको पता है कि अब जो है चैट जीपीटी का एक नंबर आ गया, फोन नंबर, उसको अगर आप अपने फोन में फीड कर लें तो आप उससे बात कर सकते हैं जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं। कैन यू इमेजिन
चैट जीपीटी जो एआई है वो आपको स्कैन करके सारे आप कहां बैठे हुए हैं, किस एनवायरमेंट में हैं,
हाँ।
आज आपको क्या पहनना चाहिए,
मगर एज अ दोस्त की तरह आप उसका नंबर फीड कर सकते हैं।
हाँ हाँ, आप उससे बात करें,
हाँ बात कर सकते
जैसे
हैं
सीरी है, एग्जाम्पल स्टार्टिंग विद द सीरी,
हाँ।
तो आप बात करते हैं जी आज बताओ, तो वो आपसे बात कर रही होती है। सेम एआई जो है वो इज वेरी एडवांस,
हाँ बहुत हाई एडवांस,
आप उसको जो है वो रोबोट आ गए तो अब तो एआई रोबोट है, वो आपके साथ बात करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे एज ए कंपेनियन, आपके साथ जो है जिंदगी बसर करेंगे। तो लेट्स सी।
हाँ ठीक है। अच्छा जनाब, आज जो है आपको हमने बताया ही था कि जो सीआईए के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स और जो बाकी के कुछ मोसाद के भी लोग थे वो दोहा में पहुंचे हुए थे, लेकिन कोई प्रोग्रेस जो है इन टॉक्स में फिर भी नहीं हो सकी है हॉस्टेज डील या सीज फायर डील्स के लिए। अनलाइक जो हम सारा कुछ सुन रहे थे मार्क मिलर से भी, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दूसरे बंदों से कि जी वी आर वेरी क्लोज, तो सीज फायर के लिए कुछ भी नहीं हुआ। एंड एज अ रिजल्ट जो है विलियम बर्न्स वो चले गए हैं कतर से, एक दिन के लिए वो आए थे, कुछ भी वो कहते हैं जी हेडवे नहीं हो सका है इसराइल और हमास के बीच में। इसके अलावा यूएस और कतारी मीडिएटर्स जो बैठे हुए हैं वो ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं ट्रंप के आने से पहले, इनफैक्ट वो कोशिश कर रहे हैं कि ये डील हो जाए ताकि चीजें जो हैं फिर ट्रंप के आने के बाद स्मूथली चलें। एक सोर्स जो है जिसने कि मीडिया से आज बात करते हुए ये कहा है कि अग्रीमेंट तो नहीं हुआ है लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उसमें इसराइल ने अपनी बहुत लंबी लिस्ट दी है और ये जो नए डेवलपमेंट्स अब आ गए हैं उसकी वजह से चीजों के अंदर ये रुकावटें आ रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन यही है कि क्या ये लोग अब ट्रंप के फिर आने का वेट करेंगे या उससे पहले ये चीजों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि इम्पैस चल रहा है इस वक्त एक इजरायली डिमांड्स की वजह से हमास और इसराइल के बीच में। हालांकि कल हमने आपको बताया था कि बाइडन साहब ने कहा कि बिल्कुल रेडी है नतन्याहू बात करने के लिए, पता नहीं कैसे रेडी है पता नहीं है, लेकिन बहरहाल तो वो कहते हैं जी कि ये जो है इन्होंने हमास को एक डिमांड अब नई भेज दी है इसराइल ने। उन्होंने कहा है कि एक लिस्ट ऑफ तमाम वो नाम हमें दो उन हॉस्टेजेस के जो जिंदा हैं या जिनको तुमने मार दिया है, उसके बाद हम इसके ऊपर चलेंगे। अब ये तो सुसाइड है ना, अब वो दे देंगे तो ये भी इनके बंदे पैलेस्टीनियंस जिन्होंने पकड़ के रखे हैं वो मार देंगे, वैसे भी मार रहे हैं उनको। तो इस बीच में जो है उनकी कॉन्स्टेंटली बम्बार्डमेंट चल रही है और वो लोगों को मार रहे हैं, आज भी उन्होंने सैकड़ों लोग मार दिए हैं इसराइल ने, तो बस ये ऐसे ही चलता जा रहा है जनाब। आज श्रीलंका की जो सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स हैं और ह्यूमन राइट्स वाले हैं, आज उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी गवर्नमेंट पे एतराज किया। उन्होंने कहा जी कि कैसे आप इसराइलीज को अपने मुल्क में, खासतौर पे उनके मिलिट्री के सोल्जर्स को अपने मुल्क में आके और मजे करने के लिए दे रहे हैं, जबकि ये वॉर क्राइम्स इन गाजा के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं और ये कोलंबो के अंदर जो है घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं। असल में हुआ यह है कि एक वीडियो जो है वो सामने आई है जिसमें कि एक लड़का जो है इसराइली सोल्जर ایئر، وہ فلسطینین سویلینز کو مار کے بڑا خوش ہو رہا ہے اور سارے اس کو کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہی از آور ٹرمینیٹر اور جو ہے وہ یہ. تو یہ سول گروپ نے کہا جی کہ اس کو فوراً اس لڑکے کو یا اس کے ساتھ دوسرے جو آئے ہیں ان کو آپ اریسٹ کریں. بیلجیم بیسڈ این جی او جو ہے وہ پرسیو کر رہی ہے لیگل کیسز اگینسٹ اسرائیلی ملٹری پرسنل جنہوں نے کہ وہ کہتے ہیں جی تھاؤزنڈ آف فلسطینینز کو غزہ میں ان دا لاسٹ 14 منتھس مارا ہے. اس لڑکے کا نام جو ہے اب سامنے آ گیا، اس کا نام ہے گال فیرن بک اور یہ جو ہے اسرائیل کی آرمی کی انفینٹری بریگیڈ جو ہے اس کے ساتھ ہے اور یہ ہیبریو میں بڑے، یہ جو ویڈیو بنی ہوئی ہے سارے کھڑے مذاق اڑا رہے ہیں پیلسٹینینز کا اور ان کو جو ہے بڑی اٹراسٹیز ان کے خلاف شو کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آج شری لنکا نے کہا ہے جی کہ یہ ہمارے ملک میں کیسے ایسے گھس رہے ہیں ہالیڈے منانے کے لیے. شری لنکا جو ہے یونائیٹڈ نیشنز کا ممبر ہے اور ہمارے اوپر ایک آبلیگیشن ہے کہ ہم پیلسٹینینز کو سپورٹ کریں اور اپوز کریں ہم اسرائیلی اتھارٹیز کو ایٹ آل کاسٹ. تو آپ ان کو اپنے ملک سے آنے سے روکو، ایسا ہے. بنگلہ دیش کے انٹرم لیڈر جو ہیں محمد یونس صاحب، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں جی یہ جو D8 جو چل رہی تھی کانفرنس کائرو کے اندر، اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ریلیشنز جو ہیں اور بڑھانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اب بنگلہ دیش اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس کے اندر اور زیادہ خرابی آئے گی. اس ملاقات کے اندر محمد یونس جو ہیں انہوں نے کہا کہ 1971 کے جو باتیں ہیں وہ بار 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 آتے رہتے ہیں سامنے، تو آپ پلیز ان چیزوں کو ریزالو کریں. شریف صاحب نے کہا کہ ہم بالکل، ہمارا ایک بالکل اپنے ایکس پہ انہوں نے کہا کہ کارڈیل ہمارا ایکسچینج ہوا ہے اور ہم نے بالکل ری افرم کیا ہے کہ ہم بائی لیٹرل ٹریڈ اور ٹاکس اور جو ہے اسپورٹس اور کلچرل ڈیلیگیشن کا کریں گے اور یہ 71 کے معاملات جو ہیں اس کو بھی کریں گے. تو یہ جو اب ٹائز انڈیا کے ساتھ ہیں خراب ہوتے جا رہے ہیں جب سے یہ اسٹوڈنٹ لیڈ ریولیوشن آیا تھا اگست میں، جس نے کہ ٹاپل کی تھی حسینہ واجد کی گورنمنٹ اور ان کو انڈیا میں بھیجا تھا. اس سے پہلے حسینہ واجد نے انڈیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھے ہوئے تھے اور پاکستان کو اگنور کیا ہوا تھا. تو یہ جناب اب ان کے بیچ میں جو ہے، اور اسی لیے نومبر میں پہلی دفعہ ان اے ویری لانگ ٹائم ایک کارگو شپ جو تھا وہ پاکستان سے بنگلہ دیش جو ہے وہ گیا تھا اور سکسیسفلی اس نے انلوڈ کیے تھے کنٹینرز ایٹ چٹاگانگ پورٹ. تو لگ رہا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ میں تھوڑی سی وارمز جو ہے وہ آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یونس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو سارک جو تھی جس میں کہ یہ سارے ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن کی یہ تھی آرگنائزیشن جو کہ اب بالکل ہی بیکار پڑی ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں ٹینشن کی وجہ سے، یونس صاحب نے کہا کہ میں اس کو ریوائیو کرنے کی بالکل کوشش کروں گا. سارک کے اندر 8 جو تھے ریجنل کنٹریز تھے. ٹھیک ہے جی، دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی اسپیئر اینڈ مکے. اسپیئر اینڈ مکے کے آپ کو پتا ہی ہے بڑے زبردست قسم کے کپڑے ہیں، بہت ہی ہائی اینڈ وولن کوٹس اینڈ کاٹن شرٹس اور جو ہے بہت اچھے کیشمیئر کوٹس ہیں، تو وہ جیکٹس ہیں. تو آپ کو اگر سردیوں کے لیے بھی چاہیے ایک ہائی اینڈ اچھے کپڑے تو آپ ان کی نئی لوکیشن 775 بریٹانیا روڈ ویسٹ پہ جا سکتے ہیں اور اس ادھر آپ ان کو کال بھی کر سکتے ہیں جانے سے پہلے ایٹ 905-670-3388. اور جناب لائف ٹائم گروپ کے عدنان الوی صاحب پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی بھی انشورنس چاہیے تو آپ مجھے کال کریں یا آر ای ایس پی چاہیے، ان کا نمبر ہے 416-301-0249. ٹھیک ہے جی. اچھا جناب، پاکستان کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایف آئی آر کے آفیشلس کو کے بارے میں حکم دیے ہیں کہ جو کوئی بھی ہیومن ٹریفکنگ کے اندر انوالو ہے ان کو پکڑو اور ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جائے. کیونکہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ابھی جو یہ گریک ٹریجڈی ہوئی تھی جس میں کہ الیجلی کہا جا رہا ہے کہ 40 پاکستانی جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو پاکستان ایمبیسی ان ایتھنز، تو اس کے بعد یہ پھر انہوں نے بڑی ہائی لیول میٹنگ کی ہے اسلام آباد میں اور انسٹرکشنز جاری کی ہیں کہ یہ اتھارٹیز جو ہیں ایک پروب بٹھائیں اور ایک کانکریٹ ریکمینڈیشنز دیں کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے اور وہ تمام لوگ جو کہ یہ غریب لوگوں کو بھیج کے اور لمبے پیسے ان سے بناتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا جی کہ 2023 کے اندر بھی اسی طرح سے لوگ جو تھے وہ جا رہے تھے اور کیپسائز ہوئی تھی وہ بوٹ اور اس میں بہت سارے لوگ مارے گئے تھے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایکشن ان لوگوں کے خلاف اس وقت کیوں نہیں لیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی اس طرح کے کام جب ہوتے ہیں تو ملک کا جو ہے خراب نام ہوتا ہے، بھائی جان اور بھی چیزوں سے خراب ہوتا ہے. ایسے شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ اب امینڈ کرنا چاہتی ہے رولز آف بزنس 1973 تاکہ لیگل بیسس کیا جا سکے ٹو اپوائنٹ فارن منسٹر فارن منسٹر اینڈ ڈیپوٹی پی ایم اسحاق ڈار صاحب. अमेंडमेंट जो है ये की गई थी 18 दिसंबर को अभी, और इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है एज अ न्यू रूल कि इनकी जो है पोजीशन क्रिएट की जा सके, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कोई भी जॉब नहीं थी, यानी कि कोई भी पोजीशन नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा जी कि ये रूल्स जो है ये रिकग्नाइज नहीं करते थे कोई भी ऐसा कैबिनेट स्लॉट जिसमें कि इस तरह का डेजिग्नेशन कोई दिया जा सके, इसलिए वो कहते हैं जी कि हम अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं रूल 52A के अंदर। न्यू अमेंडमेंट इन रूल ऑफ बिजनेस वैलिडेट करेगा इसहाक डार को टू बी अपॉइंटेड एज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम डेट ही वॉज असाइंड टू बी द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो ये रूल्स में जी चेंजेस किए जा रहे हैं इनको अकोमोडेट करने के लिए। आफ्टर पॉजिटिव मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, हमारे जो बहुत बड़े आलिम हैं माशाल्लाह से JUIF के मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने आज जर्नलिस्टों के साथ इस्लामाबाद में बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ गुड न्यूज आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी डिमांड जो है मानी जाएंगी और प्रैक्टिकल स्टेप्स जो है लिए जाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ताकि हमारी डिमांड्स को माना जा सके। एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने इनको कॉल किया था और इनको इन्वाइट किया था कि इनके साथ मुलाकात करें, और ये जो मदरसा का बिल है बड़ा कंटेंशियस जो होता जा रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन का बिल, इसको जो है डिस्कस करना चाहते थे प्राइम मिनिस्टर साहब। इस मीटिंग में मौजूद थे नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस आजम नजीर तारर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारर, प्राइम मिनिस्टर्स एड राणा सनाउल्ला, AGP मंसूर उस्मान अवान, अब्दुल गफूर हेदरी, सेनेटर कामरान मुर्तजा, राजा परवेज अशरफ एंड कमर जमान कायरा। तो वो कह रहे हैं जी कि मुझे लगता है कि ये माना जाएगा जल्द ही, बस फिर बेड़ा गर्क की तरफ तुसी जड़ा ना बेड़ा गड़की की तरफ चल पड़ा। केपी के जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा जी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है उसको फौरन केपी की को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि कुरुम एजेंसी के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको ये बिल्कुल संभाल नहीं सकते हैं। ना सिर्फ उन्होंने केपी की गवर्नमेंट को बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को भी बहुत झाड़ा। उन्होंने कहा जी कि मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने पारा चिनार जो रोड है उसको क्यों ओपन नहीं कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं मामले को संभालने के लिए, बिल्कुल इनका मुझे इन एक्शन नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो लीडर थे अलामा नासिर अब्बास, उन्होंने भी केपी की गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा कंडेम किया। केपी में एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है और वहां पे आए हुए थे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर से मिलने के लिए इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल कुरुम एजेंसी के अंदर हम बंकर्स को खत्म करेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स विल, और उसको जो है फिर पीस इलाके के अंदर लाया जाएगा। इस मीटिंग के अंदर ना सिर्फ गंडापुर और नकवी थे बल्कि पिशावर के कॉर्प्स कमांडर, केपी के चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस जो है वो, और की कैबिनेट मेंबर्स जो थे वो भी थे। ट्राइबल क्लैशेस के अंदर अभी तक कुरम में 200 लोगों की सिंस जुलाई डेथ हो चुकी है, और कमेटी जो अब ये डिस्कस करेगी स्ट्रेटजीज के अनरेस्ट को कैसे खत्म किया जाए। नकवी साहब ने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट आपको इस सिलसिले में रहेगा। सिंध के जो गवर्नर हैं कामरान टिसौरी, उन्होंने कहा जी कि ये जो डंप ट्रक्स जो अनअबेटेड तरीके से चल रहे हैं जिसके के नीचे लोग आके मर रहे हैं, इस मैनेस को खत्म करना पड़ेगा और इनको एक स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा और ताकि वो करें। आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से गवर्नर हाउस में बात कर रहे थे और बहुत ज्यादा इन्होंने कंडेम किया ये जो इनएडिक्वेट मेजर्स लिए गए हैं इस हैवी ट्रैफिक के लिए, जिसके के नीचे अभी कुछ दिन पहले 2 साल की एक बच्ची आके जो है वो मर गई थी। वो कहते हैं जी ये दिन और रात फ्रीली घूमते रहते हैं कराची की सड़कों के ऊपर और ये बहुत ज्यादा डेवस्टेशन ला रहे हैं, और अगर ये ना रुके तो फिर अब इस दफा इनके सामने मैं खड़ा रहूंगा। इन्होंने सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब से कहा है कि भाई आप ऑर्डर्स दें कि इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा सके, और आज ही रात आप इसके लिए ऑर्डर दें। उसके बाद उन्होंने ट्रैफिक के जो डेप्यूटी IG हैं उनसे भी पूछा कि भाई तुम लोगों के लॉज किधर हैं, ये कैसे ये ऐसे मुंह डाके सारे शहर के अंदर फिरते जा रहे हैं और तुम लोग इनको पूछ नहीं रहे हो, तो इनको जो है कोई इनको पूछो और कोई लॉ अगर कोई है इस सिलसिले में तो उनको करो। तो जनाब पता नहीं कैसे अंधे होके चला रहे हैं, बाकी दुनिया में भी चलते हैं ये हैवी व्हीकल्स जो हैं। तो भर हिंदुस्तान में भी जनाब मैंने आपको बताया ना चीजें गरमा गई हैं, तो वहां पे आज दिल्ली पुलिस जो है या उसको पास जो SIR लिखाई गई थी राहुल गांधी के लिए, तो उसको अब जो है वो मुंबई दिल्ली क्राइम ब्रांच को ये केस अब दे दिया गया है, जिसमें कि अलेजली कहा गया है कि ये जो स्कफल एक हुआ था पार्लियामेंट में उसमें राहुल गांधी ने पुश किया और धक्के दिए, जिसकी वजह से दो बीजेपी के एमपीज जो हैं वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर हो गए हैं। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के एमपीज जो थे वो एक दूसरे के साथ जो है गुत्थम गुत्था हुआ हुए थे जिस वक्त ये एंटर होने की कोशिश कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज्यादा इंसल्ट शो किए थे बीआर अम्बेडकर को, और उसकी वजह से फिर इनके बीच में जो है काफी सुना गया है कि हाथापाई हुई। दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर लिखी थी फॉर फिजिकल असॉल्ट एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस। क्राइम ब्रांच जो है वो अब जो है वो कहती है इन्वेस्टिगेट इस केस को करेगी। राहुल गांधी ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि भाई मैंने इनके वो कुछ भी नहीं किया है, ये रास्ता जो है पार्लियामेंट का रोके हुए थे, उल्टा इन्होंने मुझे थ्रेटन भी किया और मुझे धक्के भी दिए हैं, तो मैंने इनके साथ कुछ भी नहीं किया है। और बीजेपी जो है ये खामखा के एलिगेशंस लगा रही है और वो बात हटाना चाहती है उस डिस्कशन से जो हम अदानी ग्रुप की करप्शन के ऊपर करना चाहते हैं। इसके ऊपर भड़के हुए बीजेपी के जो मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने भी बड़ा स्लैम किया इनको, गांधी जी को। उन्होंने कहा कि ये हम जो ये पार्लियामेंटेरियंस को धिक्के देना और मरना पीटना मर्दानगी नहीं होती है, हीटेड वर्ड्स जो है इस पार्लियामेंट के अंदर 1952 से चलते आ रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको इतना फिजिकल होने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया राहुल गांधी का, उन्होंने कहा कहीं भाई साहब आपने कराटे वराटे या कंगफू वगैरह तो नहीं सीखा है कि एमपीज को आप मार पीट सको। भाईजान व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान में है? मैं बड़ा प्रोटेस्ट कर रही हूं, ये कैसे आप उस मासूम पप्पू के खिलाफ ऐसे बातें कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, गलत बात है। अच्छा, पंजाबी सिंगर जो है हंसराज हंस, उन्होंने आज जम के पाकिस्तान की तारीफ की। यूके के अंदर अपने एक कॉन्सर्ट के लिए वहां पे गए हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि बहुत ही अनपैरेलल्ड रिच कल्चर है सूफीज्म और आर्ट का पाकिस्तान के अंदर। आज ये जर्नलिस्टों के साथ बात कर रहे थे और बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी आए हुए थे और इसीलिए वीडियोस जो हैं आज सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल पागल हुई हैं, बेधाजा यानी कि आई हुई हैं। वो कहते हैं जी कि लाहौर को मैं अपना सेकेंड घर मानता हूं, नहीं भाई ऐसा ना करो प्लीज, साढ़े को साढ़ा लाहौर रहने दो। कहते मैं लाहौर को अपना दूसरा घर मानता हूं और मैं बहुत ज्यादा यहां पे विजिट करता था, दोस्तों से मिलता था और आजादी से घूमता फिरता था। और पायन क्या बातें कर रहे हो आप हैं जी। तो वो कहते हैं अभी पॉलिटिकल टेंशन हो गए हैं तो इसलिए ये सब कुछ इम्पॉसिबल हो गया है। मैं जो है जब उधर विजिट करता था तो मैंने देखा कि हमारे कपड़े, हमारी लैंग्वेज, हमारी हालांकि जो आम जबान में जो हम एक दूसरे को गालियां इंसल्ट देते हैं वो तक भी एक जैसी हैं, तो हमारा बिल्कुल सेम हेरिटेज और कल्चर है। और बड़े फिर जरा भावुक से हो गए, यानी इमोशनल हो गए। वो कहते हैं आपको याद है मेरी वो परफॉर्मेंस जो मैंने वाघा बॉर्डर पे दी थी और मेरा दिल टूट रहा था, मैं एक तरफ हिंदुस्तान अपना मुल्क देख रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान देख रहा था, भाईजान हमारी तरफ ना देखो प्लीज सानू छोड़ दियो। और फिर उन्होंने कहा जी कि मैं जब पाकिस्तान जाता हूं तो बहुत ही डीप स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक कनेक्शन पाकिस्तान के साथ मैं मेरा बन जाता है और पाकिस्तान का जो सूफीज्म और आर्ट है उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अच्छा जी, थैंक यू। अर्जुन कपूर साहब ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि मेरे वालिद साहब बोनी कपूर और मेरी मां मोना शोरी जो थे उनके बीच में सेपरेशन उस वक्त हो गई थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मेरे वालिद साहब जो हैं ही फेल इन लव विद श्रीदेवी और उसके बाद उन्होंने मेरी मां को डिवोर्स देकर हमसे शादी कर ली थी। और उन्होंने कहा जी कि उस वक्त तो मुझे लगता था कि मेरे ऊपर असर नहीं होगा, लेकिन मुझे हौले हौले पता चला कि मेरी एंटायर पर्सनैलिटी के ऊपर उसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। अब मैं जब पीछे की तरफ देखता हूं तो मुझे लगता है कि कैसे चीजें जो हैं चेंज हो गई। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट था लेकिन फिर मेरा दिल जो है पढ़ाई में नहीं रहा। मेरे वालिद साहब जो थे उस जमाने में बेतहाशा बिजी थे, वो दो बहुत बड़ी फिल्में बना रहे थे, एक प्रेम और एक रूप की रानी चोरों का राजा, और वो अंडर बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहते थे और मैं ये चीज समझ सकता हूं और इसीलिए हमारा बाप और बेटे का कोई खास रिलेशनशिप नहीं बन सका, क्योंकि वो कभी मुझे स्कूल से उठाने नहीं आया, कभी ड्रॉप ऑफ नहीं किया और जो है वो ये नहीं कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी लेकिन शायद उनके पास टाइम ही नहीं था और वो चीजें मुझे बहुत ट्रॉमा देती हैं। इसके साथ साथ जिस वक्त मैं फिल्मों में आया तो लोगों ने मुझे मेरे सर नेम से जज किया और कहते थे ये लेजी है, कुछ कर नहीं सकता है, उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ कि मेरी कुछ फिल्में भी फेल हो गई, तो उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कर सकते, असल में लोग चाहते थे कि मैं फेल हूं, तो इसलिए वो इस तरह की बातें करती थी। बहुत लंबा इंटरव्यू था और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की। अच्छा जी, आमिर साहब यूके की लिस्ट ऑफ टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड जो है उसकी लिस्ट आ गई है और आपको क्या लग रहा है कि एशिया में नंबर वन कौन है, शाहरुख खान है? नहीं, आप गलत कह रही हो, शाहरुख खान अब नंबर वन पे नहीं है, दिलजीत दोसांझ जो है वो अब नंबर वन पे है। और जनाब लास्ट ईयर जो था 2023 में शाहरुख खान जो थे ये टॉप 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में नंबर वन पे थे, तो इनको इन्होंने डीथ्रोन किया है, नंबर टू के ऊपर अब आ गए हैं। ये जो यूके वीकली ईस्टर्न आई ने ये लिस्ट पब्लिश की है, इसमें सिंगर चार्ली XCX जो है सेकंड नंबर पे हैं, अल्लू अर्जुन थर्ड, देव पाटिल नंबर फोर, प्रियंका चोपड़ा फिफ्थ, विजय सिक्स्थ, अरिजीत सिंह सेवंथ, प्रभास फोर्टीन, राजकुमार राव फिफ्टींथ, कार्तिक आर्यन 25th, बिग बी 26th, आलिया भट्ट 30th, वेयर इज शाहरुख खान? शाहरुख खान 32nd नंबर पे हैं, ये व्हाट इज दिस हैं? और ऋतिक रोशन 47th नंबर पे हैं। तो इनको जब कहा कि आप अब शाहरुख खान से आगे निकल गए तो आप इसके बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने बजाय इसके कि कुछ कहते अपना एक गाना जो था उसको उस स्टेटस के ऊपर लगाया जिसका टाइटल है बॉर्न टू शाइन, है जी। और पाकिस्तान ने जनाब ये जो लेवल की है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड 81 इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड लेवल किया है, जो 81 रन की इनकी विन हुई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन सेकेंड ODI, और अब ये सिक्योर किया इन्होंने 2-0 लीड इन 3 ODI सीरीज में, तो उसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड लेवल किया है। पाकिस्तान की ये थर्ड ODI सीरीज ट्राइम्फ जो है साउथ अफ्रीकन सॉइल पे आफ्टर 2013 एंड 2021, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम थी जिसने 3 ODI साउथ अफ्रीका में 1997, 2002 एंड 2011 के अंदर जीते थे। इसके पहले पाकिस्तान ने ODI सीरीज जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी जीती है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके साथ साथ नहीं उसकी तरह। और कामरान गुलाम ने 50 बनाए थे, शाहीन शाह अफरीदी जो थे उन्होंने 4 विकेटें ली थी 47 जिसकी के वजह से वो होस्ट के ऊपर यानी कि जिम्बाब्वे के ऊपर जीत सके थे। नसीम शाह ने 3 ली थी 37 विकेट्स, यानी कि अबरार ने ली थी 2 विकेटें। पाकिस्तान जो है उसने 2 टेस्ट जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी भी खेलने हैं जो कि अब होंगे दिसंबर 26 से जनवरी 7 के बीच में, और पाकिस्तान का फाइनल ODI जो है 3 मैच सीरीज के अंदर एट द वॉन्डर स्टेडियम होएगा अब संडे को, कल नहीं परसों। और जनाब बाबर आजम ने भी ही हैज पास्ट MS धोनीज रिकॉर्ड विद हिज 73-95 बॉल्स इन सेकेंड ODI अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एट न्यू लैंड यस्टरडे जो मैच था, 33rd इनकी ये हाफ सेंचुरी थी इन द फॉर्मेट। बाबर ने धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया टू स्कोर मोस्ट 50s अगेंस्ट सीना कंट्रीज अब कौन सी हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले ये जो दोनों बैटर्स थे ये टाइड थे 38 हाफ सेंचुरीज के ऊपर। बाबर जो है इज ऑल्सो मूविंग क्लोजर टू ब्रेकिंग साउथ अफ्रीकन लेजेंड हाशिम आमलाज रिकॉर्ड फॉर फास्टेस्ट टू 6000 ODI रन्स। आमला ने ये माइलस्टोन लिया था 123 इनिंग्स में, बाबर जो है इस वक्त उसके 5905 रन्स हैं 119 इनिंग्स, और अभी 3 इनिंग्स जो है उसकी रहती हैं और वो सरपास कर जाएंगे इस फीट को भी। इस वक्त उनके पास रिकॉर्ड है टू बीइंग द फास्टेस्ट टू 5000 ODI रन्स जो कि इन्होंने सिर्फ 97 इनिंग्स में लिए हैं, ऐसे है। और जनाब पाकिस्तान के छोटे छे बच्चे मोहम्मद हसन उस्मानी ने हराया तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान हैदर बायदियेव को टू क्लिंच एशियन 14 एंड अंडर कैटेगरी 2 सिंगल्स टाइटल, और इन्होंने स्ट्रेट सेट्स में विन किया था सेमीफाइनल्स में भी अगेंस्ट फिलीपींस मार्कस लोरेंजो गो, और अब इनके पास 2 महीने में 2 टाइटल्स आ गए। इससे पहले इन्होंने असगाबत ओपन भी जो है वो जीता था तुर्कमेनिस्तान में लास्ट मंथ। तो सो गाइस वे टू गो। पीसीबी ने डिसाइड किया है कि वो अब PSL के ड्राफ्ट को बलूचिस्तान के अंदर होल्ड करेगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लीग्स हिस्ट्री, और उन्होंने कहा जी कि ये ड्राफ्ट गवादर के अंदर होएगा ऑन January 11, 2025। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि गवादर इंतहाई स्टनिंग और इंतहाई ब्यूटीफुल जो है कोस्टल सीनरी और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस के साथ एक सिटी है इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक फ्यूचर, और वो यहां के जब हम इधर होल्ड करेंगे ड्राफ्ट तो ये कल्चरल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करेगा और सेलिब्रेट इसके साथ साथ करेगा क्रिकेट को जो सारी नेशन को यूनाइट करती है। वो कहते हैं जी कि मैं वेलकम करूंगा तमाम फ्रेंचाइजेज और स्टेक होल्डर्स को हियर। HBL PSL के CEO जो हैं सलमान नसीर, उन्होंने भी कहा कि हम बड़े प्राउडली अनाउंस कर रहे हैं कि हम गवादर के जो सिटी है उसके अंदर HBL PSL प्लेयर ड्राफ्ट जो है वो करने वाले हैं। इससे जो जितने भी यंग बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स हैं वो इंस्पायर होंगे टू ड्रीम बिग, ठीक है जी। एवे اور جناب اب ہم جائیں گے اپنی اسپیشل رپورٹ کی طرف. تو اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ اور اسپیشل رپورٹ از اسپانسرڈ بائی ڈاکٹر نازیہ رحمان, ڈینٹسٹری آن مس رجوے, مسز ساگا میں ہی ہے یہ بھی, لیکن پہلے جو تھا ان کا ڈینٹسٹری آن مسز ساگا تھا, یہ دوسرا ان کا کلینک ہے. تو آپ کو کسی طرح کے بھی دانتوں کے پرابلمز سالو کرنے ہیں تو آپ ان کے پاس جائیں. ان کا نمبر ہے 9058200900. اینڈ جناب پائل جیولرز اسلم بھائی کے پاس جاؤ اور جتنی زبردست جیولری ان کے پاس 22 کیرٹ گولڈ کی ہے وہ سب خرید لاؤ. ان کے پاس ڈیزائنز جو ہیں دبئی, سنگاپور, انڈیا, پاکستان کے ہیں. آپ ان کو کال کر سکتے ہیں آن 9057907879. اینڈ سلطان بھائی, سلطان بھائی ہوتے ہیں برامپٹن ٹی وی اینڈ اپلائنسز پہ, زبردست قسم کے ان کے پاس جو ہیں ڈسکاؤنٹس ہیں. 801 بوے ڈرائیو ویسٹ پہ ہوتے ہیں. ان کا نمبر ہے 9054502828. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اب جناب دل تھام کے بیٹھے ہیں کیونکہ یہ رپورٹ جو ہے شاید آپ کو تھوڑے جھٹکے دے سکتی ہے جی, لیکن یہ بہت ہی انفارمیٹو رپورٹ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو وڈے وڈے لوگ ہیں یہ کیسے وڈے وڈے پلان بناتے ہیں, اور یہ پلان انہوں نے کب سے بنائے ہوئے ہیں, 1960s سے پلان بنائے ہوئے ہیں کہ پورے مڈل ایسٹ کا ہم کو جو ہے نقشہ چینج کرنا ہے. اور اگر آپ کو ہنری کسنجر صاحب بھی یاد ہوئے, ان کا بھی انہوں نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ ہم مڈل ایسٹ کا نقشہ چینج کریں گے. لیکن یہ صرف مڈل ایسٹ تک بات نہیں رہ جائے گی, یہ پھر پہنچے گی ایران, اور ایران سے پھر پہنچے گی پاکستان. اب آپ کہیں گے جی کہ انڈیا کیوں نہیں پہنچے گی. انڈیا اس لیے نہیں پہنچے گی کیونکہ انڈیا آلریڈی بڑا کلوز فرینڈ ہے اسرائیل کا, تو اس لیے انڈیا کو کچھ نہیں ہے فرق, لیکن آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, اسپیشل رپورٹ ہے. 2025 جو ہے جناب بہت ہی زیادہ ایران کے لیے اور پاکستان کے لیے آنکھیں کھولنے کا ٹائم ہوئے گا. نتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اپنا بڑا ہی اسٹریٹجک قسم کا گولز جو ہیں وہ حاصل کر چکے ہیں. انہوں نے اپنا ملٹری کنٹرول پوری طرح سے کر لیا ہے غزہ پہ اور ویسٹ بینک پہ اور جیروسلم پہ, اور اب وہ ایران کا جو نیوکلیئر ایمبیشن ہے اس کو بھی ختم کریں گے, کیونکہ انہوں نے آلریڈی جو ان کے ایلائز تھے حماس اور حزب اللہ کو تو ختم ہی تقریباً کر دیا, اور پھر سیریا میں سے بشار الاسد کو انہوں نے بھگا دیا ہے جو کہ ایک لاسٹ لائن آف ڈیفنس جو تھا اس کے اندر رہ گیا تھا. تو اب یہ ہیوج ونز ہیں نتن یاہو صاحب کے لیے, اور اب جو ہے یہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جو سیرین گورنمنٹ گری ہے, ویسے تو سیرینز نے بڑی خوشی کا یہاں پہ جو ہے وہ اظہار کیا, لیکن یہ اصل میں جو ہے یہ بہت ہی خطرناک نیوز ہے اس آدمی کا چلے جانا, یعنی بشار الاسد کا ایران کے لیے اینڈ فار دا وائڈر ریجن آلسو. تو اب یہ سیریا جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ اس کے اوپر کانسٹنٹلی یہ اٹیک کر رہے ہیں, اور سیریا کی جو ملٹری ہے وہ کچھ بھی انہوں نے ختم کر دیا اس کو, وہ اس کو بالکل بھی جو ہے سنبھالا نہیں دے سکتے ہیں. تو ود آؤٹ سیریا جو تہران ہے اس کا اب جو وہ سارا علاقے کے اندر زور تھا وہ لگ رہا ہے کہ کمزور ہو رہا ہے. ایران کا انفلوئنس ویک ہوتا جا رہا ہے اسرائیل کے اگینسٹ, اور اسرائیل جو ہے ڈومیننٹ ریجن کے اندر بنتا جا رہا ہے. تو اس لیے ایران جو ہے اس وقت بڑا ان ٹربل ہے, حالانکہ بڑے وہ ریزیلینٹ لوگ ہیں. آیت اللہ خامنائی کا کل بھی ہم نے آپ کو ایک بیان سنایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہمیں مرا ہوا مت سمجھو, کیونکہ تسی پنجابی تے سنیا ہوئے گا مویا ہویا ہاتھی بھی سب لگتا ہوتا ہے جی. تو میرے خیال میں اس کے اوپر چل رہے ہیں ایران والے. تو اب جو ہے ایران کے پاس کیا آپشنز ہیں اس وقت؟ ایران کے پاس آپشنز یہ ہیں کہ یہ آئیدر اپنا جو نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام ہے اس کو جاری رکھیں, یا اس کو سکیل بیک کریں, اور یہ جو آئی اے ای اے کی جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ بات کرے, اور جو ہے یہ جو اپنے جو ہے اس میں جو اٹیکس ہو سکتے ہیں پھر اسرائیلی ان کو روک سکے, کیونکہ اسرائیل کے اٹیکس کے اوپر یہ بہت ہی ولنریبل ہو گیا, کیونکہ نتن یاہو نے ایک دھمکی بھی ایران کو دی ہے کہ اب تم ہم سے نہیں بچ سکو گے, اب ہم تمہارے اوپر اٹیک کریں گے, اور کر سکتے بھی ہیں, اور خاص طور پہ تمہارے نیوکلیئر جو پروگرام تم نے چلایا ہوا ہے اس کے اوپر کریں گے, جس کے اوپر ایران کا بڑا زیادہ جو ہے وہ کنسرن ہے. اور اگر ایرانی جو ہیں وہ بیک ڈاؤن کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی آؤ جی پراپرا مل کے بن کے تھے رہنے ہیں, پھر کیا ہوئے گا؟ ٹرمپ صاحب جو ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ آنے والے ہیں 20 جنوری کو, اور وہ نتن یاہو صاحب کے بڑے وہ بھی کلوز فرینڈ ہیں, ان کو بی بی کہتے پھرتے ہیں وہ. اور جو ہے ظاہر ہے کہ اگر نتن یاہو نے اٹیک کیا ایران پہ تو ٹرمپ صاحب بالکل اس کو نہیں روکیں گے. ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ایرانین لیڈرشپ جو ہے وہ شاید پرگمیٹزم دکھائے گی پچھلے حکومتوں کی طرح, اور وہ یہ جو ملٹری کنفرنٹیشن ہے اس کے اندر انٹر نہیں ہوئے گی. ٹرمپ صاحب نے آپ کو پتا ہی ہے کہ 2015 میں بھی یہ جو ڈیل ہونے لگی تھی جس میں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کو ہم سینکشنز ہٹا دیں گے لیکن اپنا نیوکلیئر پروگرام یہ شٹ کرے وتھ 6 ورلڈ پاورز, اس سے پیچھے آگے تھے, اور بلکہ انہوں نے ایران آئل کے اوپر جو ہے وہ لگا دی تھی، ایک روک لگا دی تھی. حالانکہ اس وقت چائنا نے اور رشیا نے دوستیاں علاقے میں بنانے کی کوشش کی ہیں، یو اے کے ساتھ بھی دوستی بنائی ہے، قطر کے ساتھ بھی، اور جو ہے وہ ترکیے کے ساتھ بھی، لیکن جو ہے یہ چیزیں جو ہیں خراب اس لیے ہیں کیونکہ جو باقی کے کنٹریز ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے رہنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو یہ بھی فال آف سیریا بھی ہوا ہے، اس کے اندر میجر رول الیجلی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ہے، جو ترکیے ہے، یو اے ای ہے اور سعودی عربیہ، یعنی کہ الیج رول کہا جا رہا ہے. تو یہ ان سب کا ہے الانگ ود امریکہ، کیونکہ وہ چاہتے تھے بشار الاسد کو ہٹانا تاکہ یہ جو آخری ریزسٹنس علاقے میں رہ گئی تھی اسرائیل کے خلاف، اس کو ہٹایا جائے تاکہ اب پھر جو ہے قبضہ یعنی کہ اب بڑھا جا سکے ایران کی طرف. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایران کی طرف اگر یہ بڑھے تو یہ پاکستان میں نہیں جائیں گے؟ جی بالکل پاکستان میں جا سکتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان کے پاس جو ہیں نیوکلیئر جو آرمز ہیں، پاکستان از دا اونلی مسلم کنٹری جو کہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ ہے، اس کے اوپر بھی اب اسرائیل کی آنکھیں ہیں. اسرائیل نے بڑی دفعہ اس چیز کا اظہار کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ اور دوستی بڑھانا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے کہا ہے جی کہ جس وقت تک آپ ایک انڈیپینڈنٹ پیلسٹینین سٹیٹ کو نہیں مانیں گے ہم آپ کے ساتھ دوستی نہیں کریں گے. تو اب اسرائیل کہہ رہا ہے خلی ولی ایوری بڑی. اوکے، اسی لیے جو ہے لوگوں نے بڑی دفعہ پاکستان کو کہا کہ ایران کے ساتھ دوستی بنا کے رکھو کہ کبھی ایسا کوئی موقع آ گیا تو آپ ایک یونائیٹڈ فرنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن اسرائیل کہہ رہا ہے جی اب ٹھیک ہے، ہم نے حماس کو بھی ختم کر دیا، حزب اللہ کو بھی ختم کر دیا ہے، اور ایران تو ہمارے نشانے پہ ہے. سارے کا سارا جو ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے انہوں نے گھس کے ان کے جو جرنیل ہیں قاسم سلیمانی وغیرہ ان کو مارا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ تو پیس آف کیک ہے، ہم تو پھر بھی اور ہم تو اب ان کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، اتنے لمبے ہمارے پاس جو ہیں مسلز ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے اوپر بھی جو انہوں نے ابھی کل ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ اس کے مسل پروگرام پہ سینکشنز لگائی ہے، حالانکہ اس کا اثر وزر کچھ نہیں ہونا کیونکہ وہ چائنیز اور پاکستانی کمپنیز ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ان دونوں کو ہی، چائنا کو بھی اور پاکستان کو، ذرا تھوڑا سا سبق سکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کا اثر کوئی خاص نہیں ہوگا. تو اب یہ ان کا جی اگر تو پاکستان اور اس کا الائنس نہ رہا تو یہ پھر جو ہے وہ کافی چیزیں خراب ہو سکتی ہیں. ایک موومنٹ چلی تھی کچھ عرصہ پہلے فار گریٹر اسرائیل، جس کے نقشے بھی کوئی دکھائے تھے آپ کو پتا ہے یونائیٹڈ نیشنز میں نتن یاہو صاحب نے، جس کو کہ کہا جاتا ہے لینڈ آف اسرائیل موومنٹ. یہ ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی اسرائیل میں ڈیورنگ 1960s and 1970s، اور یہ ایک انہوں نے سبسکرائب کی تھی ٹو دا آئیڈیالوجی آف گریٹر اسرائیل. یہ سب سے پہلے اس کا جو پروپوزل تھا وہ کہا گیا تھا کہ ایک سیپریٹ جوئش جو ہے وہ سٹیٹ ہونی چاہیے، اور برٹن تو کہتا تھا کہ جوئش اور عرب سٹیٹس ہونی چاہیے، جو کہ ایک برٹش پیل کمیشن بنا تھا 1937 میں، لیکن اسرائیل کہتا تھا کہ نہیں ہم نہیں مانتے، ہم کو صرف ایک اسرائیل سٹیٹ چاہیے. 1947 میں یونائٹڈ نیشنز جو جنرل اسمبلی تھی اس نے اڈاپٹ کیا تھا ایک پارٹیشن پلان فار پیلسٹینینز ہیڈنگ ٹو 1948، جو کہ لیڈ کیا تھا ان ٹو 1948 پیلسٹینین وار پہ، اور اس میں بھی بڑا ظلم انہوں نے جو ہے اسرائیلیز نے ان کے اوپر کیا تھا. اسرائیل جو ہے اس نے ہمیشہ جو وارز لڑی ہیں عرب نیبرز کے ساتھ، چاہے وہ 1956 کی ہیں، چاہے 67 کی ہیں، چاہے 73 کی ہیں، وہ سب جیتی ہیں، اور اس کے اندر اس نے کافی ٹیریٹوریل گینز بھی کیے ہیں، پارٹ آف گولان ہائٹس فرام سیریا، پارٹ آف سائنائے فرام ایجپٹ، جو کہ پھر انہوں نے ایجپٹ کو واپس کیا انڈر اے پیس ایکارڈ، گازا جو تھا کا کچھ حصہ جو ایجپٹ میں تھا وہ انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا ہوا ہے، ویسٹ بینک، ایسٹ جیروسلم، جو کہ جس کو کہ کچھ حصے کو جس کو کہ دیکھتے تھے جارڈن، وہ جارڈن سے انہوں نے کھینچ لیا ہوا ہے اب، اور اب یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف یہ گازا اور ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم، بلکہ یہ آگے اور بھی جو ہے بڑھیں، جس کے اندر ان کا ایم ہے کہ پورا سیریا اور پورا جارڈن اینڈ بگر پارٹ آف ایجپٹ جو ہے وہ بھی اب ان کے گریٹر جو اسرائیل ہے اس کا پلان ہے. سپٹمبر 2024 میں یو این جی اے نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس میں انہوں نے بہت کنڈیم کیا تھا اسرائیل کو کہ یہ کانسٹنٹلی جو ہے یہ آگے 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 بڑھتے جا رہے ہیں اور پیلسٹینیز کو ختم کر رہے ہیں. ان کو کہا تھا کہ بھئی اس کو آگے بڑھنے کو روکیں. اسرائیل کا جو نوٹوریس ڈیکیڈ اولڈ جو ان کا سٹائل ہے کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز کی کوئی پرواہ ورواہ نہیں کرتے ہیں نہ پیلسٹینینز کی کرتے ہیں، تو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا 1947 کا یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن 1812 اور 1993 اور 1995 میں جو اوسلو ایکارڈز بھی ہوئے تھے، ٹو سٹیٹ سولوشن جس میں دیا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے کنڈیم کیا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی دو سٹیٹس نہیں ہے، ایک ہی ہے اور وہ اسرائیل ہے. بائی جون 2024 یعنی کہ اس سال جون میں 146 آؤٹ آف 193 یونائٹڈ نیشنز کے جو ممبرس انہوں نے ریکگنائز کیا تھا پیلسٹائن کو ایز این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، بائی مڈ 2024 380,000 جو اسرائیلی سیٹلرز تھے ان کو جو ہے سیٹل کیا گیا تھا، ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन लैंड पे। इसके अलावा 500,000 जो है उनका प्लान किया गया है फॉर शॉर्ट टर्म। इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर जो है बेजल अल समोत्रिक, उन्होंने डिनाई किया था। उन्होंने तो यह कहा था आमिर साहब, उन्होंने कहा था कि पैलेस्टीनियंस तो कोई नेशन ही नहीं है, कोई ये है ही नहीं, तो इनको स्टेट क्यों चाहिए? पैलेस्टाइन कोई नेशन नहीं है, तो वाई डू दे नीड अ स्टेट, यू नो? यानी कि उनके मुल्क पे कब्जा करके उनको कह रहे हैं कि तुम तो कोई नेशन ही नहीं हो, तो इसलिए दे डोंट हैव एनी राइट्स ऑन लैंड। फॉर्मर इजरायली जनरल्स जो हैं अब वो कॉन्स्टेंटली एडवांस कर रहे हैं टू टेक ओवर गाजा, और कॉन्स्टेंटली जो है ईरान के ऊपर भी वो तैयार बैठे हुए हैं कि वो हमला कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो यमन में, सीरिया में, और जो है उसमें लेबनान में जो है वो करते हैं। लेबनान में तो अभी थोड़ी वो कमी आ गई है, लेकिन ये अटैक्स कॉन्स्टेंटली थोड़ी थोड़ी देर में करते हैं। और वो अब वो चाहते हैं कि गाजा से पूरी तरह से पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को धिक्का दे के जॉर्डन में भेज दिया जाए, ताकि ये सारे का सारा इलाका जो है खाली किया जाए, क्योंकि इवेंचुअली उन्होंने जॉर्डन के ऊपर भी कब्जा करना है। अकॉर्डिंग टू इनका जो इसराइल का आर्टिकल 7 लॉ है, वो उसने उसके अंडर भी बैन कर दिया गया है UNRWA, जो कि आपको पता ही यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी एड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि एड गाजा को देती थी। उन्होंने कहा जी तुम एंटर ही नहीं हो सकते हो अब गाजा के अंदर, और बहुत सारे सेटलर्स जो हैं अब बिल्कुल टेम्पररी कैंप्स में बैठे हुए हैं गाजा के बॉर्डर पे, और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी तरफ से कॉन्फर्मेशन उनको चाहिए कि कब वो पैलेस्टीनियंस को खत्म करेंगे, ताकि वो उस इलाके के अंदर घुस के अपने घर वर बना सकें और वहां पे सेटल हो सकें। 1960s में बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट जो था इजरायल ने शुरू किया था, जिसका के मेन मकसद ये था कि कट किया जाए डीप वाटर कैनाल एक मेडिट्रेनियन के अंदर फ्रॉम एश्कलॉन नियर गाजा डाउन टू द पोर्ट ऑफ इलात एंड एक्सेस द रेड सी टू बायपास स्वेज कैनाल। आपको पता ही है कि स्वेज कैनाल जो है वो एक लाइफ लाइन है इजिप्ट की, लेकिन वो कहते थे जी कि ये इजिप्ट के पास इतना पैसा क्यों जा रहा है, इसको हम काट के एक नया रास्ता बनाएंगे, ताकि कोई भी इंटरनेशनल शिप्स जो है जो कि स्वेज कैनाल से गुजरते हैं और बड़े पैसे इजिप्ट को देते हैं, उनको देने की जरूरत नहीं है, वो सारे के सारे पैसे जो है हमको दें, हमारे तरफ से इधर से गुजर के जाएं, ताकि ये सारी इंटरनेशनल शिपिंग की जो रिलायंस उनके ऊपर है ये रिड्यूस की जा सके और उससे पैसा बनाया जा सके। एक इंडिपेंडेंट रिसर्च जो आई थी उसके जो उसने कहा था अभी रिसेंटली कि ज़ायनिज्म के जो फाउंडर थे 19th सेंचुरी में थियोडोर हर्ज़ल, उसने कहा था, उसने अपनी डायरीज जो हैं एर्थस इज़राइल के अंदर उन्होंने कहा है कि जूश एरियाज जो हैं वो सारे के सारा पूरा पैलेस्टाइन है, यानी कि पूरा पैलेस्टाइन जो है वो ट्रेडिशनल जूश एरियाज हैं। और उसने कहा जी कि ये सारे एरियाज जो सेनाए इजिप्ट पैलेस्टाइन और साइप्रस तक में भी जो आते हैं, जिसका कि वो कहते हैं जी के जिक्र किया है उसने अपनी डायरीज में, वो कहते हैं जी कि ना सिर्फ ये बल्कि हम तो नील से लेके, वो जैसे कि अलामा इकबाल ने आमिर कहा था ना, एक वो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के सायर से लेके ताब खाके काशगर, वो कहते हैं जी ये सारे का सारा हिस्सा हमारा है, यानी यूफ्रेटस तक, नील से लेके, नाइल से लेके यूफ्रेटस तक सारे का सारा इजराइल जो इलाका है वो इजराइल का है, और उसके ऊपर इजराइल का कब्जा होना चाहिए। ये इनका बिलीफ है, एक खास सेक्ट जो है इनकी ज़ायनिस्ट की, नॉट ऑल ज्यूज, ज्यूज आर डिफरेंट, ज्यूज आर गुड पीपल, ज़ायनिज्म की हम बात कर रहे हैं। ज़ायनिस्ट जो है उनका ये बिलीफ है कि 2000 BC में जो प्रॉफिट अब्राहम थे, और उनको जो है उनके मुताबिक गॉड ने बताया था कि ये मैं आपको सारी जो लैंड दे रहा हूं और उसके जो डिसेंडेंट्स हैं उनका अब राइट है एज इसराइल इस सारी की सारी जो है लैंड के ऊपर, और फिर उसके लिए वो कुछ वर्सेस जो हैं बुक ऑफ जेनेसिस जो है इन बाइबल उसमें से वो पढ़ते हैं और उसका अपना ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। इसके अलावा जो वो कुछ आयते तौरा में से पढ़ते हैं उसका भी ये इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि अब्राहम को, प्रॉफिट अब्राहम को खुद से गॉड ने कहा था कि ये सारे इलाके के ऊपर इसराइल जो है वो बनेगा। तो अब पता नहीं कैसे कहां से आयतें निकाल रहे हैं। तो वो कहते हैं जी कि ये जो मैप्स हैं जो कि दिखाए हैं इन्होंने, ये जो है नतन्याहू साहब ने, उसमें ये ग्रेटर इजराइल जो है ये पूरे का पूरा ये एनकैम्पस करता है। इसके अंदर 30% इजिप्ट, मोस्ट ऑफ इराक, अ लार्ज एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया, द होल ऑफ कुवैत, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, सदर्न तुर्की, ये सारे के सारे उनका प्लान है कि ये ग्रेटर इजराइल में बनाएंगे। और इस वक्त आखिरी जो उनके खिलाफ, चूंकि अब हमास और हिजबुल्ला जो है बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, तो आखिरी रेजिस्टेंस उनके सामने खड़ी है ईरान, جس دن انہوں نے ایران کو بھی برباد کر دیا, دا نیکسٹ ٹارگیٹ از گوئنگ ٹو بی پاکستان. تو جناب ہن پھر تسی کی کہنا چاہتے ہو اس کے بارے میں؟ ہیں جی, سانو اپنا اس اسپیشل رپورٹ کے لیے آپ ہم کو اپنا فیڈ بیک دو.
بالکل جی, بہت شکریہ آپ کی رپورٹ کا. اور وہ کرسٹیا فیلینڈ والی نیوز کیا تھی, وہ جو آپ شروع میں دے رہی تھی ان کی بک کے حساب سے
ہو رہا تھا؟
تو میرے خیال سے جو میری مجھے کریکٹ کر دیں مجھے کہ 2023 سے آئی تھنک یہ بک ان کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا.
ہاں, تو لیکن وہ پبلش نہیں کر رہے تھے اس میں بہت ساری وہ چیزیں.
ٹو وہ کہتے ہیں ان کی انٹینشن ٹو بی اے پرائم منسٹر, اس کا علم ان کے آفس کو تھا.
تھا تو وہی تو وہ اسی لیے تو اس کے وہ جو آتھر ہے وہ کہتی ہے نا کہ یہ کوسچن میں اس سے پوچھنا چاہتی ہوں
100% تھا,
لیکن وہ مجھے ملی نہیں ہے. اور دو سال سے وہ یہی تو کر رہی تھی, اور وہ کہہ رہی تھی اس کو پبلشنگ ہاؤس کو پبلش کر دو کر دو کر دو, اور وہ کہہ رہے تھے نہیں اب اس میں بہت ریسرچ چاہیے, اب یہ چاہیے وہ چاہیے. اب جب اس نے ریزائن کیا تو فٹ آف فٹ انہوں نے پبلش, انہوں نے کہا نہیں
نہیں بھی ہوگا پہلے سے سب چیزیں, ہاں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں 2023 سے. تو بہرحال سم ٹائم لوگوں کو پوزیشن چاہیے ہوتی ہے,
ہر کسی کو چاہیے, ہر کسی کو چاہیے. جگمیت سنگھ صاحب کو نہیں چاہیے,
وہ بھی لگے ہوئے.
ہاں, اور ہمارے جو ہیں پی ایف پالی ایف کو نہیں.
اوور نائٹ دیکھیں نا انہوں نے کیسا چینج کیا جگمیت صاحب نے. پہلے کل تک کہہ رہے تھے جی آپ
میں گیمز میں نہیں آؤں گا, کیا بات کر رہے تھے, میں کنزرویٹو کی گیم
اور میں جو ہوں وہ ٹروڈو صاحب ریزائن کر دیں لیکن گورنمنٹ کو ٹاپل نہیں کریں,
نہیں کریں گے. اور میں جو ہے یہ تو ان کی گیمز میں نہیں آؤں.
اب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ جی دس از دا رائٹ ٹائم,
اب گرم ہے نا تو ہتوڑا مار دو,
ہتوڑا مار دو کافن میں جو ہے وہ نیل ٹھوک دو.
ہاں,
تو دیکھیں جی یہ پالیٹکس ہے دنیا بھر میں ایسے.